हम देख रहे थे कि जब बच्चे की उम्र बलूगत के करीब होती है, तकरीबन हम टीन एज को छू रहे हैं, इस उम्र में जो अखलाकी खराबियां पैदा होती हैं या बच्चे के अंदर जो चेंज आता है, हार्मोनल चेंज, उसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट गुस्से की सूरत में दिखता है। जब हम बच्चे के अंदर उसके रवैये में जुलझुलाहट देखें और इरिटेशन देखें, हर चीज़ पे परेशान होना देखें, तो पीछे उसके कोई ना कोई रीज़न होगी। गुस्सा वैसे तो हर एज के बच्चे को, बड़े को, हर एक को ही आता है अगर हम अपने जहन में इस चीज़ को रख लें, लेकिन जो गुस्सा वक्त के चेंज के साथ साथ आ रहा होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है। तब हम इस वक्त एक प्रेजेंटेशन की रोशनी में देखेंगे कि जिस वक्त बच्चे को या बड़े को, किसी दूसरे को गुस्सा आया हो तो हम उसको कैसे टैकल करें। और अगर आपने और मैंने ये चीज़ सीख ली ना, तो हमारी पेरेंटिंग के 50% मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये जहन में रखिएगा, क्योंकि गुस्सा एक आग है। शैतान ख़ुद भी आग से बना और इस वक्त भी वो लोगों को गुस्सा दिलाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स दूसरे से लड़ा और उसके नथने सुर्ख हो गए, तो आपने बाहर आके कहा कि कोई इसको बताए कि यऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, क्योंकि गुस्सा शैतान की वजह से होता है। तो जब भी कभी हमें किसी को ऐसा कोई मामला पेश आए, तो देखते हैं कि हमें उस वक़्त क्या करना चाहिए। ये एक प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार किया गया है, 10 टिप्स टू हैंडल एंग्री चाइल्ड। तो हम इसको एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं पहली टिप, डोंट जेल और चैलेंज योर चाइल्ड व्हेन ही इज़ एंग्री। अपने बच्चे पर चीखें नहीं और उसको चैलेंज ना करें जबकि वो गुस्से में हो। इसको आप उर्दू या पंजाबी के एक मुहावरे से रिलेट कर लें तो वो क्या है कि जलती पे तेल ना डालें। बहुत ख़तरनाक होता है। बच्चे को जब गुस्सा आया होता है तो उस वक़्त अगर हम चीखने लगते हैं या अगर उस वक्त गुस्से में उसको चैलेंज करते हैं, अच्छा करके दिखाओ, अच्छा फिर जो कह रहे हो करो, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, इस किस्म के जो नेगेटिव जुमले होंगे ना, ये बच्चों के ऊपर बुरा असर डालेंगे और उसकी वजह से वो पहले से और ज़्यादा भी गलत काम करने लगेगा। इससे अपने आप को बहुत रोक के रखिए और इससे उसका गुस्सा और बढ़ेगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त जो बेस्ट चीज़ है ना गुस्से के ऊपर, आपका कूल एंड काम रहना, खामोश। आपने साइंस का असूल पढ़ा होगा कि जब आग लगती है तो अगर वहाँ ऑक्सीजन रोक ली जाए, यानी ये ऑक्सीजन जो होती है ना आग को जलाती है ज़्यादा, तो उसकी वजह से अगर वहाँ हवा रुक जाए कुछ हो, तो फिर आग आगे नहीं भड़कती। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपने आप को खामोश, सांस रोक के खड़े हो जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा मामला बेहतर हो जाएगा। देखें क्या, मेक श्योर करें ये बात कि चैलेंजिंग योर चिल्ड्रन व्हेन ही इज एंग्री इज जस्ट लाइक थ्रोइंग अ मैच ऑन टू अ पाइल ऑफ फायर ब्रिक्स। यानी आपके बच्चे को गुस्सा आया और आप उसको अब चैलेंज कर रहे हैं, बच्चा कहता है मैं दीवार से कूद जाऊंगा, मैं खिड़की से बाहर जाऊंगा, मैं ये तोड़ दूंगा, तो आप कहते हैं हाँ हाँ करके दिखाओ, करो करो शाबाश। बस जैसे जैसे आपने माचिस की तीली लकड़ियों के गट्ठे पर लगा दी, और वो उस वक़्त उसको भी नहीं पता होगा कि वो ये क्या कर रहा है, और वो कर लेगा, जब उसके बाद उसके नतायज निकलेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ख़तरनाक होंगे। अमूमन आजकल हम देखते हैं कि बच्चों का मूड बहुत अग्रेसिव रहता है, कुछ हालात और माहौल के असर की वजह से, कुछ घर के अंदर और बाहर के माहौल का फ़र्क। ये ऐसे जैसे आप अंदर आएँ तो बहुत गर्म घर है, बाहर जाएँ तो बहुत सर्दी है, तो आप फील करेंगे कि एंड ऑफ द डे आपके सर में दर्द होगा और वो दिल दिमाग पर बोझ पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से है, तो ऐसे वक्त में आप खामोश रहें, बस ये एक हल है आपके साथ। आज से किसी को भी गुस्सा आ रहा है, बड़े को या छोटे को, मोस्टली बड़े बच्चों के ये गुस्से की बातें हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा छोटे बच्चों को भी गुस्सा आता है। मिसाल ले लेते हैं, चले बेबी है, रो रहा है, रो ही रहा है, रो ही जा रहा है, अब आप चीखें क्या हो गया, दूध तो पिला दिया, अब और क्या तुम्हें चाहिए। नहीं, आप देखेंगे माओं की घबराहट से घबरा के बच्चे और रोते हैं। आप फील कर लें, रोते बच्चे को किसी कूल एंड काम बंदे के हाथ में आप दे दें, सब पीछे हो जाए, वो सीने से लगा के थपकेगा, प्यार पीछे करेगा ना, तो बच्चे को सुकून आएगा कि नाउ आई एम सिक्योर। उसके लिए अनयूजुअल बात होती है कि ये हो क्या गया, ये चीख क्यों रहे हैं। इसी तरह हमारे बड़े बच्चे जो होते हैं उनके लिए भी हमारी चीखों पुकार जो है वो दुरुस्त नहीं है। दूसरी टिप नोट कीजिएगा, डोंट ट्राई टू रीजन विद योर चिल्ड्रन व्हेन ही इज़ इन द मिडल ऑफ एंगर, और इस तरह से गुस्से में जब आपका बच्चा बिल्कुल गुस्से की शिद्दत में हो, तो उसके साथ रीजनिंग ना करें। रीजनिंग क्या होती है, आप अपने दलाइल पेश कर रहे हैं, वो अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। मसलन जैसे आप ये कह सकते हैं कि बच्चा चीख रहा है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, اور غصہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو آئس کریم کھلانے لے کے جاؤں گی اور اب آپ نہیں لے کے جا رہی. یا دیکھیں ابو چلے گئے اور مجھے چھوڑ گئے. مثال ہے, یہ غصے کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا. اب ریزننگ شروع ہو جائے, تمہیں نہیں پتہ باہر -20 ہے, تمہیں نہیں پتہ آئس کریم کھانے سے خراب ہوتا ہے, تمہیں نہیں پتہ کھانسی ہو جائے گی. یہ ریزننگ کرنا, ڈونٹ ڈو دس. خاموش, بالکل اپنے آپ کو رکھیں, اس کو ٹائم دیجیے. بہت سارے ماں باپ جو ہوتے ہیں آرگیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, لاجک دینا شروع کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو جب بچے غصے میں ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے جو اڈلٹس ہوتے ہیں, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ ایسے معاملے میں اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں یہ ظالم ہیں اور میری بات کو سمجھ نہیں رہے. تو لہٰذا ایسے وقت میں بھی آپ ریزننگ نہ کریں, چپ کر جائیں, ایک دفعہ چپ کر جائیں. کوئی بھی بندہ ہو, ہماری ایک پوری ورک شاپ اس پہ الحمدللہ پروگرام ہو چکا ہے اینگر پہ, ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر, ہسبینڈ غصے والے ہیں تو کیا کریں, بچے ہیں تو کیا. اس میں تو ہم نے پورے آل اباؤٹ اینگر کیا تھا, لیکن اس میں ہم کم از کم اتنی باتیں اگر سمجھ جائیں کہ اپنے بچے کو تھوڑا سا ٹائم دیجیے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک دم آگ کا ایک بھانبڑ سا چل گیا تو اس کو بجانے کے لیے کچھ ٹائم لگے گا نا. سلو ڈاؤن, کیپ ڈاؤن, کیپ ڈاؤن, ٹیک ڈیپ بریتھ. اب آپ بالکل اسی طرح بچے کو, اب جو وہ اس کے اندر ایک ابال جو آیا ہے تو ایک دم تو نہیں جائے گا. چولہے پہ پانی رکھیں پتیلے میں تو ایک دم جوش ہوگا, چولہا بند بھی آپ کر دیتے ہیں تو کیا ایک دم ابال اترتا ہے؟ آہستہ آہستہ نیچے جاتا ہے, پھر ایک دم وہ کول ہوتا ہے, پھر دھوئیں نکلتے ہیں. بالکل لوگوں کو ٹائم دیا کریں بجائے اس کے کہ اس کے سر پہ سوار ہو. پھر تیسری چیز ہے کہ پے اٹینشن ٹو یور فزیکل ریئیکشن. یہ بہت اہم ہے, اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ بعض مائیں خاص طور پہ اور باپ بھی آف کورس, جب بھی ان کے اوپر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ وہ اپنے فزیکل پوسچر پہ اس وقت غور نہیں کرتے. مثلاً جب آپ کوئی کسی کو غصے میں دیکھتے ہیں تو آپ زبان سے بڑبڑ بڑبڑ کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, ادھر سے جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں. یعنی کبھی غصے کی حالت میں اپنے بولے ہوئے جملے ہم ریکارڈ کر کے سنیں, اور اگر کوئی اس وقت ہماری ویڈیو بنا کے ہمارے فیس ایکشنز ہمیں دکھائے تو کبھی بھی ہم دوبارہ غصہ نہ کریں. یقین کریں, کسی کو اگر اپنے غصے کی شکلیں دکھیں, آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ جب ہم غصے میں بول رہے ہوتے ہیں اور بڑھ بڑھا رہے ہوتے ہیں اور تیزی سے بول رہے ہوتے ہیں, کیا اس وقت ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ دوسرا ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ایک اس قسم کا ایکسپیرینس ہوا تھا کہ گھر میں ماں اور بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی, تو جب بیٹھا تھا نا اس نے ریکارڈنگ کر لی. اس کے بعد وہی باتیں, ماں بھی اس کے پاس آئی دکھ سکھ کرنے اس لحاظ سے کہ میں بڑی دکھی ہوں, میں تو کچھ کیا ہی نہیں. لوگ یہی کہتے ہیں نا, میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے, اور بیوی کا بھی یہی خیال تھا. تو اس نے دونوں کو بیچ میں رکھ کے کیسٹ چلا دی کہ یہ آپ خود سن لیں آپ نے کیا کہا. تو پھر اس کو دلائل کو کون بدلے گا؟ اس لیے کسی چیز کا بیسٹ پروف جو ہوتا ہے نا, اس کی پکچر اور اس کی ویڈیو ہوتی ہے. میں بولوں گی, ایگزیجوریٹ کر دوں گی, کم کو زیادہ کر دوں گی. تو لہٰذا ایسے وقت میں اپنی باڈی لینگویج کو کنٹرول میں رکھیں. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ غصے کو تیز کرنے میں آپ کتنے مددگار ہو رہے ہیں. پھر نیکسٹ ہے کہ ٹیک اے ڈفرنٹ اپروچ وتھ ینگر کڈس. یعنی اگر آپ کے بچے 4 سال کی عمر سے چھوٹے ہیں اور ان کو غصہ آ چکا ہے, تو موسٹ افیکٹو اسٹریٹجی کیا ہے؟ ٹو موو اوے فرام ہم فار اے وائل. اس کو اکیلا چھوڑ دیں. یعنی جس بچے کو غصہ آ رہا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیں, آپ پیچھے ہو جائیں, تاکہ وہ اپنے غصے میں کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکال دے کہ جس سے بعد میں وہ بھی آپ سے شرمندہ ہو, گناہگار ہو, اور آپ کو بھی اس کی وہ باتیں جو ہیں وہ بری لگیں. پہلے اس کو کول ڈاؤن کیجئے, پہلے وہ روم ٹمپریچر پہ آئے. جیسے اس طرح آپ دیکھیے کہ فریزروں میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں نا, تو اس کو کیا کہتے ہیں, پہلے روم ٹمپریچر پہ لائیں. میٹ ہے اس کو پہلے کول کریں, یا کوئی بہت ابلتا ہوا کھانا ہے فریج میں نہیں رکھیں گے نا, پہلے اس کو روم ٹمپریچر پہ لاتے ہیں. تو یہ جو غصہ ہے نا, یہ بہت ہائی ٹیمپرامنٹ پہ جانا ہے. یہ جو ہماری اس وقت نارمل سچویشن ہے نا, یہ روم ٹیمپریچر ہے, پہلے اس پہ لائیے. دل, دماغ, عقل کام کرنے لگ جائے, سوچنے لگ جائیں, پھر اس وقت جب تھوڑا سا انسان اس طرح فیل کرتا ہے کہ آگے سے بھی اگلا بندہ ہٹ گیا ہے, کچھ نہیں کہہ رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں, تو وہ خود بھی کوشش کرے گا کہ اپنے غصے پہ قابو پا سکے. آپ دیکھیں گے کہ اس طرح جب وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو, اب تھوڑی طرف ہو گئے, ممکن ہو تو پانی کا گلاس دے دیں, ممکن ہو تو کوئی اس طرح کی چیز اس کے سامنے رکھ دیں کہ بہت چڑ نہ چڑھائیں, پانی پیو, اوز بلا پڑھو, تم پہ شیطان آ گیا ہے, تمہیں پتہ ہے غصہ آگ ہوتا ہے, تم جہنم میں جاؤ گے. ڈونٹ ڈو دس تھنگس. تھوڑا سا بھی قرآن جب ہم پڑھ لیتے ہیں نا تو اور ہی خطرناک ہو جاتے ہیں. اللہ کی پناہ. اس طرح ہم چھریوں اور چاقوؤں کی طرح قرآن کی آیتوں کو اور حدیثوں کو کوٹ کرتے ہیں کہ فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے. थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी किसी बात को आखिरी बात ना समझे कि बस आज तो ये हो ही जाना है, अब तो बस गुस्से में आ गए, अब तो लगता है कि इसने खुदकुशी कर जानी है। कुछ नहीं होगा, आराम से कूल डाउन बिल्कुल साइड पे हो जाएं, दूसरे बच्चों को पीछे कर लें, अपने आप को पीछे करें। जब वो थोड़ा सा समझ जाएगा तो फिर उसके बाद बात उसको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। फिर नेक्स्ट थिंग क्या है कि डोंट फ्रीज अप। कुछ लोग होते हैं कि जब भी इस तरह का गुस्सा आता है उसको, यानी ये वही बात है कि बिल्कुल उबलती हुई चीज़ के अंदर बर्फ़ डालना। किस तरह? अभी चुप कर जाओ, बोलना नहीं, सही हो जाओ, आंखें नीचे करो, ये स्टाइल। डोंट डू दिस। उसको निकालने दे अपना उबाल, अगर वो थोड़ा बोल रहे हैं ना, बोलने दे। अच्छा कुछ कहती है, और बोलो, और बोलो, अच्छा और कर लो, अच्छा और कर लो, ये भी आग में लगाने वाली बात होती है। ठीक है, तो आप उनको क्या करें कि छोड़ दें। बेस्ट बेस्ट थिंग, किसी अगर आपके मियाँ को गुस्सा आता है आप पे, बीवी को या बीवी पे गुस्सा आता है मियाँ को, या आपको किसी प्यारे, इवन माँ बाप की कुछ बातों पे गुस्सा आ सकता है, बच्चों की बातों पे आता है, उसका सबसे बेस्ट थिंग है कि उस बंदे को थोड़ी देर के लिए अलग कर दें। वजू करके नफिल शुरू कर दें, जाए नमाज पे बैठ जाएं, कुछ ऐसा करें। मुझे एक ऐसा वाक्य याद है कि सास बहू की कोई बात हुई, तो बहू नहीं थी बात करना चाह रही आगे से ना, सास बोल रही थी मुसलसल और वो नजायज़ बात कर रही थी, जो बात कह रही थी वो ठीक नहीं थी। तो बहू जो थी वो दीन समझी हुई थी, उसने क्या किया कि वहाँ से उठ के कमरे में जाके तो नफिल शुरू कर दिए। अब जब वो नमाज पढ़ने लगी ना, आप कहते हैं कि उसकी सास को तो पेट में बल पड़ने शुरू हो गए, चक्कर लगा रही है उसके कमरे के, एक लगा रही है, दूसरा लगा रही है, तीसरा, आखिर वो पढ़ रही है ना। तो नमाज के अंदर आपको पता है कि जब तशहुद में बैठे हैं जितनी मर्जी दुआ करें, तो वो फिर सब्र नहीं करे, करी हूँ तू मांग मेरे खिलाफ़ बददुआ। उसको इतना खौफ आ गया कि ये मेरे खिलाफ़ बददुआएं कर रही है। अच्छा वो उसको अब कुछ कह नहीं सक रही थी ना कि नमाज़ पढ़ी थी तो, लेकिन अगर उसने उस नमाज में वाकई नफिल लंबे कर लिए, तो बजाय इसके कि वो सास जो गुस्से के मूड में थी, अग्रेसिव मूड में थी, अब इस वक्त वो डिफेंडिंग हो रही है ना कि अब खुदा के लिए बंद करे कि मेरे ऊपर कोई बवाल ही ना आ जाए, तो उसका ज़मीर जागा ना। इस तरह से ज़मीर जागी, जगवाइए, कुरान पढ़ना शुरू कर दे। क्या कोई इतना खुदा को छोड़ा हुआ तो नहीं है कि आप कैसे कुरान छीन लेगा? हाँ फौरन ना करें कि गुस्से में तो वो आपसे बाकी कुरान ही छीन लेगा, नहीं आओ इधर बात करो, तरीके से, हिकमत से। मुझे सब बातों में जो चीज़ लग रही है इस पेरेंटिंग के टॉपिक को पढ़ते पढ़ाते हुए, हिकमत है, कब कहाँ क्या करना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी, आप देखिए कि बाज़ दफ़ा हम बच्चों के साथ सख्ती पे आते हैं, इतनी सख्ती में शुरू से कड़क करके आखिरी गोली ले लेते हैं। नहीं, स्लो सिंपल, पहले प्यार की बातें, फिर नरमी की बातें, उनको रूल्स बताएं, उनको तोहफे तहफ़ दें, फिर थोड़ी सजा, फिर पनिश, फिर झमकी, फिर नहीं तो फिर आखिर में। मसला आप देखिए कि हमारे किचन में दो तीन किस्म की छुरियाँ होती हैं, वो छुरी जिसे गोश्त काटना है, क्या धनिया आप उससे काटते हैं? और अगर आप गोश्त काटने वाली बड़ी छुरी से धनिया काटेंगे, तो हो सकता है धनिया की जगह आपकी उंगली का गोश्त कट जाए। डॉक्टर्स को आप देखते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं ना, आपको चेक करें, कभी एक चिमटी लेते हैं, कभी दूसरी लेते हैं। आपने घरों में छुरियाँ, अच्छे अच्छे चम्मच कितने बड़े मुख्तलिफ साइज़ के हैं, कांटे हमारे घरों में कितने साइज़ के हैं। तो क्या हम बच्चे के साथ एक ही हथियार इख्तियार करें? दो एक्सट्रीम्स माँ बाप में बहुत देखी गई हैं, या तो छुरी कल्चर है और वो आखिरी कल्चर है, हर बात में मार दूंगी, मर जाऊंगी, ये कर दूंगी, तुम्हें ये कर दूंगी, यानी एक्सट्रीमली पनिश्ड। और दूसरी तरफ ये है कि एक्सट्रीमली प्यार प्यार प्यार, बीच में रही, समझिए इसको गुस्सा किस बात का है, क्या उसकी रीज़न समझे, क्या हो गया इसको, इस वक्त क्या मसला हुआ है, कोई इसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं, इसको कोई पेट में दर्द तो नहीं है। आप ही तो चेक करें ना कि इसको गुस्सा किसका है, और यकीन करें कि बच्चों के साथ जो गुस्से के मामले हैं ना, उसमें आप देखें तो हमारा फूड, अब फिर क्योंकि ये फूड की खिलाफ हो गई, लेकिन हमारा हैवी फूड आज के दौर में, बस अगर आप एक बच्चे को बर्गर खिलाते हैं, आप देखिए उस बर्गर में एक फ्राई फिश है, डीप फ्राई, उसके साथ हमने उसको चिप्स लेके दिए, वो भी फ्राई, फिर उसमें मायनीस मिला हुआ, उसमें कुछ स्प्रेड है, और आपको पता है मायनीस किस चीज़ से बनती है? कच्चे अंडों को फेंटते हैं और उसके अंदर मक्खन डालते हैं, बीट करते हैं, और उसमें येलो सॉस और दो तीन चीज़ें, सब हैवी एंड रिच फूड है। अब आपने वो वाइट सॉस उसके अंदर लगाई हुई थी, साथ आपने उसके मील में कोक का एक ग्लास ले लिया, कोक क्या है? निरा कार्बन है। अब एक बच्चा जो बिल्कुल अभी को 8-10 साल का है, उसकी फूड इतनी नहीं होनी चाहिए, जब आपने उसको इतना मील करा और साथ आपने उसको एक एप्पल पाई भी ले दी जो सारी मीठे और चीनी और घी से भरी पड़ी है, अब जब आपके बच्चे ने वो सब खाना है तो उसका कुछ असर होगा कि नहीं होगा? जितना ज़्यादा हैवी मील बच्चों को आप देंगे, आपके बच्चों के अंदर उतने फैटी एसिड बढ़ेंगे, उनके जिस्म के अंदर उतनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगी और उनको एनर्जी अब यूटिलाइज करनी है, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए बाज़ दफ़ा बच्चे गुस्से में आते हैं। कभी आप देखते हैं गुस्सा इतना करते हैं, माँ गाड़ी चला रही है, बच्चा पीछे बैठा है और ऐसे लगता है करीब है कि वो पीछे सीट को पाँव मार मार के माँ से कोई गलत काम ना कर दे। आप अपने ऊपर इसको लें, मैं गाड़ी चला रही हूँ, पीछे दो बहन भाई लड़ पड़े हैं, अब मैं क्या करूँगी। आपके अंदर हिकमत होनी चाहिए। अगर ऐसी एडवर्स कंडीशन हो ना, पहले गाड़ी साइड पर खड़ी करें, फिर आप सामने आए, फिर उनका मामला सेटल डाउन कराएं। ये जो हम लोगों ने कहते ना मिन्नतें कर करके तेरी बिगाड़ दी, और बाज़ बच्चियों बच्चों को छोटों को मैंने फील किया, उनको माँ का वीक पॉइंट पता है। माँ चूँकि अब ड्राइविंग सीट पे, अब इसने छोड़ना नहीं है, चला रही है गाड़ी, बैठ गई है, अब वो जो मनवाना है उस वक्त मनवाते हैं। आपने कहा था मैं तुम्हें मैकडोनल्ड लेके जाऊँगी, क्यों नहीं ली, ठीं 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 शुरू कर दिया रोना। फिर माँ भी जान बचाने के लिए वादे झूठे सच्चे करती हैं। हाँ 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 देखिए आज ही से लिख ले, आपने इनकी नहीं माननी, आप इनको बाहर खाना खिलाएंगे कब, जिस दिन का आपने असूल बनाया। मैंने आपको शुरू में ये भी बात बताई थी इस टॉपिक में यंग बच्चों के साथ के शुरू से अपने रूल्स बना रहे हैं ना, फिर मनवाएं। बच्चों को बता दें कि हफ्ते में ओनली एक दिन बाहर से खाना आएगा, और वह जुमेरात का दिन है, तो वो जुमेरात ही है। तुम चीखो, तुम टांगे मारो, तुम दाल ना खाओ, तुम भिंडी ना खाओ, गोभी ना खाओ, नहीं खाना, खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना तो यही खाना है, करो जो बात है। हम ख़राब करते हैं, आज पिज़्ज़ा बना दो, अच्छा बर्गर बना दो, अच्छा तुम्हें मैं वो चिप्स बना दो। हम सोचते हैं ये ममता का इजहार है, ये पेरेंटिंग का बेस्ट तरीका, मुझे मिस दुनिया की बेस्ट मॉम होने का अवार्ड मिलेगा अगर मैंने अपने बच्चे की हर बात मानी। कतन नहीं माननी। आज के बाद आप अपने घर का 7 दिन का मेन्यू बनाएं। ये टिप्स हम साथ साथ ही ले रहे हैं ना, कि हमने अपने घरों के असूल बनाए, लिमिट्स बनाए। घर में गोश्त कितने दिन पकना है और रोज़ नहीं पकना। मैं सिर्फ ये सारी चीज़ें छोड़ के आपको बीच में सिर्फ मीट के इफ़ेक्ट्स दिखा दूँ ना, तो आपका अपना भी गोश्त खाने को दिल भर जाएगा। और जो मीट आज हमारे बच्चे खा रहे हैं, लिटरली मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आई बैग टू, कि आप ये फ्रोज़न मीट जो पैटिस बने हुए और फ्रोज़न सीख कबाब बने हुए, आजकल तो हमारे अपने मुल्कों में इतने शुरू हो गए, फ्रेश का तो तसव्वुर पीछे हो गया। और जब चीज़ फ्रीज़र में आती है ना, तो फिर घर में आती है। सच बताएं, हम अपने जहनों में लगाएं कि कभी अगर हमें बचपन में कहा जाता कि आज बंदू हाँ के आपने टिक्के चले खाने जाएंगे, फ्रेश सीख कबाब है, कराची में एक मशहूर दुकान है, या कोई लाहौर की भी होगी या जहाँ की भी होगी, पहले मुँह में पानी आना शुरू हो जाता था कि आज हम फ्रेश टिक्के खाने जाएंगे। चिकन टिक्का, चिकन टिक्का एक बहुत बड़ी याशी थी, हमने अपने बचपन से देखा कि जो वीकेंड होता था तब उस दिनों में जुमे की छुट्टी थी, तो जुमे रात को मोस्टली हमारे वाले जो थे हम सबको बच्चों को साथ लेके बाहर खाना खाते थे, ऐसे गाड़ी में खा लिया, लेकिन बस एक ट्रेडिशन था, गए डिफेंस का चक्कर लगाया, समंदर पे गए, खाना वाना खा के बाहर से आ गए, इतना शौक होता था। अब मैं उसी पाकिस्तान में जाके देखती हूँ, आप अपने रिलेटिव्स के घर का किसी एक का फ्रीज़र खोलें, ये केएन्स, केएन चिकन, केएन पैटिस, ग्रीन कबाब, आलू कबाब, मीठा कबाब, अच्छा जी वाह ये तो बड़े मॉडर्न हो गए। कोई मेहमान आता है तो पहले 2 चीज़ें बनती थी, अब 4, भाई इतनी जल्दी क्या बना, कुछ नहीं वो फ्राई किया। मुझे सबसे ज़्यादा सदमा जिस पे लगा, मैं कहीं रही और सुबह के वक्त में मैं भी चली गई नीचे अपने मियाँ के लिए नाश्ता बनाने, तो उस वक्त जो घर की बहुएँ माँ थी वो अपने बच्चों के लिए नाश्ते बना रही थी। बिलीव मी बच्चे के नाश्ते और लंच बॉक्स में वो उनको ये सीख कबाब वगैरह फ्राई कर कुरके और बोनलेस बोटी और चिकन कुछ खिला रही थी, कुछ उनके उसमें डाल के बैठी हुई थी। मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा इस बच्चे ने पढ़ना खाक है, इतना हैवी मीट, इतना स्पाइसी मील आप उसको नाश्ते में दे रहे हैं, सुबह दे रहे हैं, इसको क्या कशिश रहनी। और कशिश कहाँ रही, जब फ्रीज़र देखा उसमें हर किस्म का मीट मौजूद है, और मीट की हर किस्म फिर मौजूद है, कीमा भी मौजूद है और चिकन भी और वो भी है। कल आप उसको किस चीज़ का लालच देंगे, कोई आप उसको बटेरे ही खिलाएंगे तो वो खुश होगा, अब वो चिकन पर तो खुश नहीं होगा। चिकन घर में, नगेट घर में, फिश घर में, शामी कबाब आपके घर में, कच्चे कीमे की टिक्कियाँ आपके घर में, क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या हम में से अक्सर पाकिस्तानी घरानों के फ्रीज़रों का यही हाल नहीं है? आज से डेड करें, ख़त्म करें अपने इस कल्चर को, वल्लाही फ्रीज़रों को साफ़ करें, खाली करें, इसको ज़रूरत के लिए रखें। एक चीज़ रखी है ना, अगर आपके घर में गोश्त की एक चीज़ बन गई है ना, पहले वो ख़त्म होगी तो दूसरी बने, बना के रख लें, आलू के कबाब बना लें घर में, कभी ज़रूरत पड़ती है बना लिए, अगर वो बन गया। अब कीमे के मिसाल है कोफ्ते आजकल बना दें, यहाँ कौन आता है अचानक, बताएं आजकल को बगैर बताए आता है, या कोई खानों पे जो हमारे अपने मुल्कों में होता है कि एन वक्त पे भी लोग आ जाते हैं, हम नहीं पकाने, फिर अपने ही पुराने बनाए बनाए पकाए बना करके खाते हैं। हमने अपने बच्चों को खुद बिगाड़ दिया। आप मेरी इस बात को इस वक्त बिल्कुल जोक ना समझें। 3 महीने सिर्फ आप अपने घर से एक्स्ट्रा खाने की चीज़ें ख़त्म कर दें। फ्रेश खाना जो बनेगा, आज सुबह बन रहा है तो दोपहर को खा के जो बचेगा वो रात को होगा, दैट्स इट। क्या हमारे घरों की ये तरतीब नहीं थी? अल्लाह के शुक्र से, जिसको कह के मुंह में सोने का लुकमा खाते हुए दुनिया में पैदा होके हम लोग आए हैं, कि अल्लाह ने कभी नहीं दिखाई गुरबत। लेकिन एक ही तरीका देखा था हमने अपने घरों का, कि दोपहर को फ्रेश खाना पकता था, सब खाते थे। मियाँ के लिए अलग निकलता है, जो बाप है उसका सालन अलग। कभी हमारे तसव्वुर में नहीं था कि खाना पक गया और हम बच्चों को मिल जाए। अब्बू का सालन है। ये कुर्सी जो साइड टेबल होती है, जो डाइनिंग टेबल की, ये अब्बू की है। हम बच्चे नहीं बैठ सकते थे वहाँ। हमारे लाशौर में ये हमारे अब्बू की कुर्सी है। चिकन की जो लेग पीस बोटी होती थी, लेग पीस कितनी इज्जत वाली थी। यकीन करें, दमादों को और बड़े बुजुर्गों को लेग पीस देनी है। आज बच्चा पहले माँ तोड़ के पहले पकाते में उसको खिला देती है, इसको बड़ी पसंद है ये बोटी। यकीन करें आप, मैं हम नहीं आगे बढ़ सकते टीन एजिंग पे जब तक हम अपने बच्चों की ये छोटी छोटी हैबिट्स ना ख़राब करें, आप इनकी आदतें ठीक ना करें। एक माँ ऐसी है, मैं जानती हूँ कि मैंने खुद देखा हुआ है हमारे अपनों में से, है कि घर में दाल भी पकती थी तो सास से बचा के चोरी छुपे भी वो 2 बोटियाँ डाल के उसके लिए गोश्त खा लेती थी कि ये मेरा बेटा खाए खाए। इतना माँ को ख्याल होता है कि इतना मैंने जितना इसको खिलाना है ना, ये उतना ही बड़ा होगा, इतनी जल्दी बड़ा होगा। कोई बड़े नहीं होते। अब हाल क्या हो गया कि वो गोश्त के बगैर रोटी नहीं खाता, और अब गोश्त खाने की वजह से तकलीफ़ें हैं। जवानी की उम्र, यंग ये कितने मसले हैं उस बच्चे को। माएँ फिर भी समझ जाएँ तो समझ जाएँ। आप दोपहर का खाना पकाएँ, फ्रेश खाना पकाएँ। मियाँ घर में नहीं भी आते ना, उनके लिए अलग से एक डोंगे में निकाल लें, आप भी खाएँ, बच्चे खाएँ। हमेशा रात को दोपहर के बचे हुए खाने को ही उल्टम पुल्टम कर लेती थी माएँ। कभी चावल बना लिए साथ, कभी खिचड़ी बना ली, कभी कुछ थोड़ा बहुत तोड़ फोड़। यानी एक सालन बन गया या 2 बनते थे, बड़े घरों में 2 भी बनते हैं, गोश्त बन गया, एक सब्ज़ी। रात को कुछ बचा खुचा खाया, सुबह उसी में किसी को रोटी बना दी, किसी को अंडा बना दिया, कुछ कर दी। अब ये आपके अपने मामले हैं, लेकिन इनको कंट्रोल में रखिए, लिमिट्स रखिए। ये नहीं कि राह चल रहे जा रहे थे स्कूल और रस्ते में, नहीं जब ये ज़िद कर रहा है मैंने मैकडोनल्ड पर रुकना है। क्या मतलब है, ये क्यों ज़िद कर रहा है? आज नहीं है दिन बाहर खाने का, नहीं खाओगे। लेट देम डू, स्टॉप हेयर। आप कंट्रोल करें। कपड़े पहनने हैं बच्चे ने, मैंने ये नहीं पहना, यही पहनना है, इस सीज़न के यही 4 सूट हैं, नहीं मिलेगा और। ये जोड़ा ख़रीदना है, ये 100 करोन से ज़्यादा का नहीं ख़रीदना, 200 से ज़्यादा का नहीं ख़रीदना। कभी अपने असूलों को अपने बच्चों की वजह से ना तोड़ें। आपके बच्चे आपको बेच के खा देंगे महावरतन, अगर आप उनकी वजह से अपने असूल बचाएंगे। और कभी बच्चों से भी ना पूछें कि बेटा क्या खाओगे, क्या पकाऊँ, क्या करूँ, किस तरह करूँ। आप चूज़ करें, आपके मियाँ चूज़ करें, बासूल घर बनाएं, जिन में माँ बाप की अपनी ज़िंदगी में रूल्स होते हैं ना, असूल। एक होता सख्ती, वो नहीं, वो बात हम कर चुके हैं पीछे। असूल बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा आपके करीब होंगे। बहरहाल आगे चलते हैं, 6 नंबर पे चलिए। गिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द बैड बिहेवियर, नॉट फॉर द एंगर। गुस्सा नेचुरल है, कुदरती बात है। यानी जो गुस्से के अंदर उसने बुरा रवैया अख्तियार किया ना, उसको देखें, वो बुरी बात है, उसको नज़र में रखें। गुस्सा अपनी जगह बुरा नहीं है, क्योंकि गुस्सा करने पे किसी को पनिश नहीं मिलेगी। हाँ, गुस्से के इजहार में बुरे काम करने पे बच्चों को बताएं, उनको कहेंगे तुम्हें गुस्सा आया, तुम कुछ नहीं कर रहे। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरी बेटी कितनी प्यारी है, गुस्से के बावजूद भी चुप हो गई है, उठ के चली गई है, बोली नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अगर वो गुस्से में चीज़ें थोड़ें, ठुड्डे मारें, बच्चों को मारें, दिस एंड दैट, तो फिर आप उनके साथ फिर आप ही सख्ती कर सकते हैं। आपको इस चीज़ के ऊपर यानी नज़र, फ़र्क दोनों का बहरहाल आपको रखना चाहिए कि हमने किस तरह से उनके साथ मामला करना है। फिर 7वें पॉइंट पे चलिए, डोंट गिव हार्श पनिशमेंट्स। बच्चे ने तो जो करना था कर लिया गुस्से में, अब आप उसकी ऊपर उसको सख्त किस्म की सजाएं ना दें। देखिए सजा पे भी बात कर लेते हैं साथ ही, कि सजा जो होती है ना, ये बंदे के अंदर रिएक्शन पैदा करती है। और जो मिसाल अभी शुरू में मैंने दी थी आपको, सज़ा जो है ना, ये गोश्त काटने वाली छुरी है, आखिरी हर्ब है। गोश्त काटने वाली छुरी जिसकी नहीं काट रही ना, तो फिर बाकी चीज़ों को भी, बाकी छुरियाँ भी नहीं काट रही होंगी। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों को हत्तुल वसा सज़ा देने से बचें। पहले दौर में कहते थे कि ड्राया जो होता है, जिसको आपने ड्रा दिया ना, वो ज़्यादा बेहतर है करके दिखाने से। ड्रावा जो होता है ना कि मैं ये कर दूंगी, मैं ये हो जाएगा, वो कर लेगा, ये बेहतर है. लेकिन जिस दिन आपने वो कर ही लिया, फिर इसके बाद वो क्या करेगा आप बताएं? सज़ा देने में सख्ती ना करें, छोटी छोटी सज़ाओं से बात शुरू करें. सज़ा आप क्या देंगे? मसलन आप देखिए ना कि बाज़ दफ़ा हम बच्चों के इन इस तरह के गुस्से और इनके मिसबिहेव के ऊपर ये सोचने लगते हैं कि इन्होंने इस तरह की बातें क्यों की हैं, तो इसको हमें देखने की बहुत ज़रूरत है. मसलन आप देखिए कि आपका बच्चा मिसबिहेव करता है, और ऑफकोर्स गुस्से में करता है ना, ऐसे तो नहीं करता, तो पहले देखें क्या ये मिसबिहेव है भी कि नहीं. मसलन कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हम जज कर लेंगे कि जो उसने गलत रवैया हमारे साथ इख्तियार किया उसमें उसका अपना क्या कसूर है. मसलन कैसे? नंबर एक, कुछ बच्चों की आवाज़ फितरी तौर पे ऊंची होती है, हम उसको बदतमीजी समझने लगते हैं. और ख़ास तौर पे देखें कि बच्चे लड़के 12-13 साल की उम्र के जब होते हैं ना, तो उनकी आवाज़ सख्त होने लगती है, ऊंची होती है, उनके जिस्म में चेंजेस आ रही हैं, तो हम उसको बदतमीज़ी समझते हैं. लेकिन वो उन बेचारों की मजबूर कहते हैं मेरी आवाज़ ही ऐसी है. कई बच्चों को आप देखें आप ना ऐसा बोल, कहते हैं मैं क्या करूँ मेरी आवाज़ ही ऐसी है. हाँ, तो इसको नोट करें. फिर एक दूसरी चीज़ ये देखिए कि बाद जब आपने बच्चे को बुलाया, मिसाल कोई क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, बच्चा बैठा हुआ आपके ख्याल में टीवी पे कंप्यूटर पे कुछ कर रहा था, आपने उसको बुलाया बेटा आओ खाना खाओ. अब आपने एक बार बुलाया नहीं आया, दूसरी बार नहीं गया, आप गए जाके धट से थप्पड़ मारा मुँह पे, सुनते नहीं है ना मेरी बात. शायद वो अपने स्कूल का कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है कि बिल्कुल आखिरी 2-4 मिनटों की बात रह गई है, छोड़ देगा तो हो सकता है दोबारा वो फोकस ना कर सके. अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करें, ये गुलाम नहीं है आपके मेरे, इसके ऊपर नज़र रखिए. फिर आप देखिए बाज़ दफ़ा बच्चे कोई इतनी फ़नी चीज़ देख रहे होते हैं अपनी नज़र में, कानों में उन्होंने कुछ लगाया होता है, उन्होंने सुनी नहीं आपकी बात, आप गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं कि आता नहीं उठाता नहीं, आके थप्पड़ मारा, बाद में जब क्या हुआ क्या, 3 आवाज़ें दी हैं, मैंने नहीं सुनी, मैंने तो हेडफोन लगाया बता. अब आप क्या करेंगे? चेक कीजिए कि क्या वाकई उसने आपकी बात सुनी भी नहीं. बाज़ दफ़ा बच्चे को फ़नी चीज़ देख रहे होते हैं, इन्वॉल्व है, कोई अपनी पसंद की चीज़ देख रहे हैं. देखिए देखिए सिर्फ सज़ा उस पर मिलेगी जो ज़बर जान बूझ के हद तोड़ेगा. ये शरीयत इस्लामिया का असूल है. भूल माफ़ है, चूक माफ़ है, नदानी के गुनाह माफ़ है, अल्लाह आखिरी वक्त तक देता है. सज़ा बिल्कुल आखिरी बात है जहाँ जान बूझ के कोई काम करे. पहली हज़रत उमर के दौर में एक शख्स चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो जब उसको सज़ा देने का हुक्म दिया गया तो कहेंगे हाँ उमर मुझे छोड़ दे, मैंने पहली दफ़ा चोरी की है. कहा झूठ ना बोलो, पहली चोरी अल्लाह किसी की नहीं खोलता, अल्लाह छुपा देता है. जब किसी का कोई जुर्म दिखता है, बस आपने अपने बच्चे को गलत चीज़ देखते हुए देख लिया, बेटी को या बेटे को, आप उसको पकड़ते हैं, वो कहता नहीं अम्मी प्लीज़ माफ़ कर दे, मैंने आज पहली दफ़ा देखी है. कैंट बी, अल्लाह नहीं खोलता हमारा पोल, ये अल्लाह की सुन्नत है. शुरू में वो हमारे गुनाह को, हमारे दुख को, हमारे उसको छुपाता है, फिर उसके बाद दूसरों को दिखाता है. तो सज़ा बिल्कुल आखिरी चीज़ होती है. बस दफ़ा भाई बहन आपस में बैठे होते, भाई अच्छा लड़के कुश्तियाँ बड़ी करते हैं, अच्छा आप कहते हैं ये लड़ाई कर रहे हैं, वो ऐसे ही जोर आजमाई कर रहे होते हैं. आप गए अब इधर से, आपने पेरेंटिंग का लेक्चर भी खैर से आज सुन लिया, बस आप तो अब आइडियल माँ बनने लग गए. आप गए जाके आपने उसको ब्रेक लगा दी, उसको भी लगा दी, भाई क्या हुआ अम्मी हमने क्या किया है, वो तुम लड़ रहे थे? नहीं अम्मी वो तुम खेल रहे थे कुश्ती कुश्ती. अब क्या करेंगे? पहले समझिए, कूल काम तहम्मुल. बच्चों की तरबियत से पहले हमें अपनी तरबियत करनी है. अपने आप को बच्चों के पाँव में पाँव डाल के देखें, क्या आप उनके जूतों में पूरे आते हैं? खुद को उस बच्चे की जगह पे रखें. कब क्यों बच्चों को गुस्सा आता है आप सोचिए. बस वह बच्चे खुद डिस्टर्ब होते हैं. देखिए जिस्मानी तौर पे डिस्टर्ब हो सकते हैं, यंग एज में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं. किसी लड़की को किसी दो स्कूल के लड़के ने कह दिया आई लव यू, अब वो शर्म की कुप्पी थी, उसने तो आज तक ये बात नहीं सुनी, वो लड़की इस पर बड़ी परेशान थी, ये क्या हो गया आज ये लड़के ने मेरी तारीफ क्यों कर दी, आप ये बातें करते हैं, मैंने तो ये 8-9 साल की बातें की हैं, मुझे ये लोग परेशान करते हैं इन बातों में कि 3-4 साल के लड़के लड़कियां जब स्कूलों में आते हैं तो वो परेशान होते हैं कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि किसी को बॉयफ्रेंड बनाओ, किसी को गर्लफ्रेंड बनाओ. ये आप सबके घरों में बातें जाती होंगी ना, सिटिंग्स तक इस तरह की होती हैं कि एक लड़का बैठे एक लड़की बैठे, और अगर कोई ना बनाए तो कहते हैं कि इसमें कोई कमी है, कोई इस तरह की बात है. तो ये डिस्टर्बेंस होती हैं, इस पर नज़र रखें कि बच्चा जब डिस्टर्ब होता है ना फिर परेशान होता है. कभी जज्बातियत होती है, नींद नहीं पूरी हुई, बाद में माहौल बदलाव है, चेंजेस हो गई, नया घर है, सफ़र है, हम बड़े बड़े सख्त जान होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ गुजर जाते हैं, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो इसके लिए आप पहले देखिए कि बच्चे को गुस्सा किस बात पर आ रहा है, फिर उसके साथ उससे बात करें इंशाल्लाह ताला. फिर उसके बाद आप देखिए कि बाज बच्चों को जो गुस्सा आता है ना, उसकी एक वजह ये हो रही होती है कि वो खुद को अनवांटेड समझते हैं और तवज्जो लेने के लिए गुस्सा करते हैं। वो जैसे हमारी फिल्मों में हीरो और विलन का चक्कर है, ये शादी नहीं हो सकती, फिर वो गरज के बोलता है ना, वो क्या आता है, तवज्जो लेनी है। बस बच्चे सिर्फ तवज्जो ढूंढने के लिए इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि वो तवज्जो चाहते हैं। माँ बाप मसरूफ़ रहते हैं, अब्बा भी मसरूफ़, अम्मी भी मसरूफ़, उनको भी जॉब करनी है, उनको भी जॉब करनी है। अच्छा फिर, अच्छा एक बच्चों की हमें हालत पे बड़ा गुस्सा आता है, वो क्या है कि मिसाल है कि आपकी कोई दोस्त है या आपका कोई टीचर है, अब आप रोज़ जाके उनको किस्से सुनाते हैं, उनके टीचर ने ये कहा, उस्ताद ने ये कहा, बच्चे पहले थ्रेट फील कर रहे होते हैं, ये टीचर ही हैं जो अम्मी को कह रही हैं कि अब इनको बर्गर ना खिलाओ और इनको कोक ना लेके दो। अब किसी दिन टीचर चली गई आपके घर, अब आप कहते हैं बेटा अम्मी सलाम करो, वो नहीं करते क्योंकि वो तो पहले ही उनसे नफरत करते हैं कि ये हमारी अम्मी को क्या उल्टी सीधी बातें सिखा रही हैं, कर रही हैं। तो बाद दफ़ा अनवांटेड किस्म के जो मेहमान आते हैं ना घरों में, बच्चे उसके रिएक्शन में भी इस तरह की बात करते हैं। फिर एक और बात, वजह भी होती है कि बच्चों के पास तजुर्बा ही नहीं होता अपने जज्बात के इजहार का। जैसे वो कहते हैं ना, हमें तो सलीका ही नहीं आता आपको आई लव यू कहने का, कहना कैसे ये भी नहीं हमें पता, टैकल नहीं कर पाते उनको। हमारे अंदर बहुत, यानी जैसे हम बड़े लोग क्या होते हैं, हम बहुत तकल्लुफात करते हैं, कैसे हैं, बड़ी खुशी हुई आपको मिलके, बहुत अच्छे लग रहे हैं, दिल में कुछ नहीं होता, बच्चे नहीं करते, खुशी हुई आपको, नहीं अच्छा लगा आपको, नहीं, आप और शर्मिंदा हो जाते हैं, बेटा आपको आंटी के आने पर खुशी हुई, नो, अब आप क्या करें, बच्चे की मासूमियत पे इसको क्यास करें। अमूमन हम माएँ इसी पे डांटती हैं, बाप को भी बताएंगे। अच्छा एक चीज़ नोट करें, अगर आप अपने बच्चे को किसी चीज़ पे आप सजा दे चुके हैं ना, तो प्लीज़ उसकी शिकायत रात को अब्बू को ना लगाएं। बाज़ माएँ खुद भी उनको दे चुकी होती हैं सजाएं, फिर हर आने वाले को फिर वही मसला सुनाएंगी। अब बच्चा कहेगा ये क्या हो गया, अल्लाह तो कहता है कि जो गुनाह से तौबा कर ले, हद लग जाए, वो पाक है, तो अल्माँ मेरी मुझे छोड़ती नहीं है। फिर कितनी, वैसे अब आप कुछ ना कहिएगा, मैंने इसको डांट दी है, अंदर लाए, फिर वही पीछे टूट के बात आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे आ रही है। माँ को इतना बड़ा दिल कर लेना चाहिए, आप अच्छी माँ बनना चाहती है ना, तो दिल को बड़ा कर लें, नज़र को बड़ा कर लें, आंखों को वसत दें अपने अंदर और उसके अंदर जज्ब करें। माँ एक बहुत गहरा बर्तन होता है, अंदर ही अंदर पड़ता जाता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि बस बच्चे जो होते हैं वो इस तरीके के काम करने लगते हैं अपने इस गुस्से के अंदर के, जिसमें वो खुद को तकलीफ देते हैं, तो अपने आप को बचाएं। किस तरह से, मसलन आप देखिए कि बस दफ़ा ऐसे हालात हो जाते हैं कि जब बच्चे को गुस्सा आता है ना, तो रियली इज सो डेंजरस कि बस दफ़ा ड्रग फटने का डर होता है। जिस तरह आप देखें ना कि अब जिस समय इतना ज़्यादा अग्रेशन है, इतना गुस्सा भरा हुआ है, बम बरूद है, तो बस दफ़ा दिमाग की रग फट सकती है, दिल के ऊपर उसका असर जा सकता है। तो आठवीं टिप क्या है, टेक अ ब्रेक। चलो भाई अभी कोई बात नहीं करेंगे, शाम को बात होगी। ये जो फौरन 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 इलाज हम चाहते हैं ना, ये दुरुस्त नहीं होता। हर मसले का हल फौरी नहीं होता, थोड़ी देर आप भी रुक जाएं, उसको भी रोकें। इसीलिए अल्लाह ने ये जो पांच नमाजों के वक्त रखे हैं ना, ये इसलिए भी कि दो के बीच में झगड़ा हो रहा हो ना, तो हैया अलसला हैया अलफला, चलो टेक अ ब्रेक, जाओ वजू करो। वजू करते ही आधा गुस्सा टेंशन तो रिलीज़ हो जाएगा ना पानी में, फिर सर झुकाएंगे, रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, अकल भी ठीक हो जाएगी। तो ब्रेक दें उनको थोड़ी देर के लिए, इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी, नहीं तुम भी नहीं बोलोगे, मैं भी नहीं बोलूँगी, बाद में बात होगी। नवी देखिए, रोल मॉडल अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स वेन यू आर एंग्री। ये बड़ा अहम है, हमेशा बच्चे ही को नहीं गुस्सा आता, कभी आपको भी तो आता है ना, तो आप बच्चे के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल बने। कब, जब आपको गुस्सा आया हुआ है, अभी बच्चे को आया हुआ है तो वो पाँव पटक रहा है, तो कल रात को आपको गुस्सा आया था तो आप भी दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बंद कर रही थी, उन्होंने देख लिया कि अम्मी को अब्बू पे गुस्सा आया था, तो अम्मी बोल रही थी, अब्बू सुन रहे थे बेचारे, अब्बू बेचारे जितना नरमी से बात कर रहे थे, अम्मी को उतना गुस्सा आ रहा था, कह रही थी आपकी नरमी देख के मुझे और गुस्सा आ रहा है, आप तो मुझे और गुस्सा दिला रहे हैं। अपने गुस्से पे काबू पाएं ताकि बच्चों को भी पाना आए। हम सब चीज़ें कोशिश करते हैं ना खुद सिखाएं अपने बच्चों को, चलना फिरना खाना पीना, तो ये भी हमने सिखाना है। बल्कि माँ मियाँ बीवी आपस में एक पोज दे लिया करें कभी कभी, चलो आर्टिफिशियल गुस्सा लाते हैं, तो मैं गुस्से में भी नरम रहूँगी आपसे, मैं कोई सख्त बात नहीं करूँगी, कभी आपको बच्चों पर आए तो फिर आप भी अपने बच्चों को इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर लेके आएंगी। और दसवीं बात क्या है कि अल्लाह से दुआ करें, प्रे बिफोर अल्लाह सुब्हान तआला एंड आस्क फॉर हिज हेल्प। अल्लाह से मदद मांगे बगैर हमारे काम नहीं हो सकते, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الخسن سهلا إذا شئت. کہ اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے سوائے اس کام کے جس کو تو آسان کر دے, اور تو جب چاہتا ہے تبھی کاموں کو آسان کرتا ہے, تو اللہ تو میرے اس معاملے کو آسان کر دے. تو یہ تھی چند ٹپس جس میں ہم غصے کے اوپر قابو پا سکتے ہیں.